हाँ जी
सर जी, मैं कनाडा बैंक से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम हुआ विनोद यादव। एक्चुअली सर, आपका नंबर मैं देख रहा था, वो आप मैजिक ब्रिक्स वगैरह पे मेरे को मिला है। श्रीनिका इंटरप्राइज करके है ना कुछ आपकी कंपनी का नाम? तो सर एक्चुअली आप सर एनपीए प्रॉपर्टीज में डील करते हो क्या?
एनपीए
सर, नॉन एसेट, हम लोग के जो बेस
करते ना।
अच्छा, तो सर मतलब हमारे पास सर एक प्रॉपर्टी थी, उसके लिए हम इंटरेस्टेड बायर खोज रहे थे। अभी वैसे वो ऑक्शन में पुट नहीं किए हैं, तो वो जब हम करेंगे सर आपको देंगे। और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम सर ऑक्शन में पुट कर दिए हैं, तो हमारे तो पैनल एजेंट भी होते हैं सर, बट देखा जाए तो सर मार्केट से ही कभी कभी निकल जाता है, तो हम उनको भी सर ऑथोराइज करते हैं। अगर वो करे तो आपका एक जो परसेंटेज रहेगा सर वो आपको मिलेगा।
ठीक है।
सर वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा जो जो अभी ऑक्शन पे पड़ी हुई है, मतलब जो एकदम रेडी है, और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, मतलब प्रोजेक्ट बोलिए, मतलब या एनपीए प्रॉपर्टी के लिए मैं बात करना चाहता था सर। ये है आपका सेंट्रल मेट्रो के पास ही सर, अराउंड गांधी मेंशन, आप देख रहे हो सर 61 प्रेमिसेस पे।
61
प्रेमिसेस नंबर 61 सीआर एवेन्यू पे गांधी मेंशन बोल के है सर, पुरानी बिल्डिंग है।
हाँ, गांधी मेंशन। हाँ ठीक है।
6.5 कट्ठे का सर उनका लैंड प्लॉट है। तो सर वो हमारे पास ही है सर, वो एक्चुअली ऑक्शन में आज न कल सर पुट हो जाएगा। तो हम सर वो जानना चाह रहे थे सर, मतलब रिजर्व प्राइस फिक्स करेंगे सर हम कुछ दिन में, फिर वैल्यूअर्स को भी बोलना है सर। तो सर क्या उसका सर सही पर कट्ठा या फिर पूरा प्रॉपर्टी का सर क्या रेट होना चाहिए, वो थोड़ा बताते हैं मेरे को।
उसका मेरे हिसाब से होना चाहिए करीब करीब 1.5 करोड़ का कट्ठा।
1.5 करोड़ रुपया कट्ठा,
अगर टाइटल क्लियर, मतलब टाइटल क्लियर है, कोई टेनेंट वगैरह नहीं है तो।
अच्छा, और सर
टेनेंट वगैरह है और कुछ अलग से पोजीशन ऑक्यूपायर बैठा हुआ है तो भी ये रेट नहीं मिलेगा
सर। उसमें कुछ तो टेनेंट्स हैं सर, अगर टेनेंट्स रहेंगे फिर सर ये क्या डिप्रिशिएट करेगा कुछ?
अगर टेनेंट रहते हुए अगर एज इट इज बेचेंगे तब तो फिर आपको ये रेट मिलेगा, नहीं तब तो आप समझ लीजिए 40 से 50 लाख का कट्ठा मैक्सिमम।
अच्छा सर,
फिर वो ना एक्चुअली फिर वो कट्ठा का रेट नहीं रहता, एक लम सम का, क्योंकि जो टेनेंट रहेंगे उनको भी एक लाखों लाखों रुपये दे के हटाना पड़ता है। अच्छा। तो कॉस्टिंग उसमें भी बहुत, जो भी खरीदेगा देखिए वो तो आपको पैसा देने के लिए खाली खरीदेगा नहीं, वो अपना भी बेनिफिट देखेगा, उसको भी कुछ तौर पर मिलेगा तो ही वो खरीदेगा।
अच्छा, मतलब अगर सर ऐसा हो तो फिर 1/3 हो जाएगा
एकदम, 1/3 प्राइस पकड़ लीजिए आप।
अच्छा, और सर ऐसे रेंट मान लो उस एरिया पे, जैसे एक सर ली, आपको पता होगा सर जैसे एक लैंड एंड बिल्डिंग मेथड से सर वैल्यूएशन निकलती है, और एक होता है सर रेंटल मॉडल पे निकलता है। तो उस जगह पे उसी प्रॉपर्टी गांधी मेंशन पे ही मान लो आज के डेट पे या उसके आसपास में कोई भी प्रॉपर्टी आज के डेट में पर स्क्वायर फीट पे कैसे रेंट पे लगता होगा?
70 रुपया 80 रुपया स्क्वायर फीट मैक्सिमम ऑफिस के लिए, और अगर ग्राउंड फ्लोर का मेन रोड फेसिंग शोरूम है तो 120-130 रुपये स्क्वायर फीट।
70 हो गया ऑफिस के लिए, मतलब ऊपर वाली फ्लोर्स हो गई वो हो गया 70 रुपये पर स्क्वायर फीट, और 120 बताया सर?
120-125 रुपये अगर ग्राउंड फ्लोर का मेन रोड फेसिंग शोरूम है तो।
अच्छा, शोरूम है तो। अच्छा, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जो अगर रहेगा तो। अच्छा सर, और ऐसे मतलब आप सर फेयर मार्केट वैल्यू अगर आप बोलोगे तो वो 1.5 करोड़ के आसपास ही है ना उस जगह का, अगर सब क्लियर हो तो। आप तो सर वो बिल्डिंग देख ही रहे हो सर, G+3 की बिल्डिंग है और 6.5 कट्ठा पकड़ के चलिए सर आप उनका लैंड पार्सल, और टेनेंट्स उसमें है सर, काफी टेनेंट्स हैं, ऊपर में भी सर फैमिलीज वगैरह हैं शायद से, और नीचे सर शोरूम है एक आधी, और अंदर में भी एक आधी ऑफिस हैं सर छोटी छोटी। तो मतलब समझ लो आप टेनेंट्स हैं सर, तो मतलब पूरा ओवरऑल मतलब क्या रिजर्व प्राइस होना चाहिए थोड़ा अगर कैलकुलेट करके बताते सर।
देखिए पूरा पैकेज प्राइस मेरे हिसाब से उस केस में होना चाहिए 2 से 2.5 करोड़ रुपया, और ये रेंज में आना चाहिए। टेनेंट है क्योंकि देखिए कोई भी अभी नया लेगा ना,
हाँ,
वो उस पुराना वाला कंस्ट्रक्शन में उसको कुछ मिलेगा नहीं।
अच्छा सर,
तो उसको उसको डिमोलिश करके उसको नया कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, नया कंस्ट्रक्शन करेगा उसके बाद ही उसका उस प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होगा।
बिल्कुल सर,
कंस्ट्रक्शन में इसका एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा।
अच्छा सर, और सर मान लीजिए ये 1 टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं हम, हमारे पास ये ऑफर आ रहा था ठीक है, तो क्लाइंट के एंड से ही मान लो 1 टाइम सेटलमेंट कर ले जिसमें वो जिसके पास है प्रॉपर्टी उसी के पास रह जाएगी, तब सर क्या वैल्यू होनी चाहिए? तब तो इतनी घटेगी नहीं ना फिर।
मतलब जिसका पास है उसी के पास हो जाए तो मतलब
सर जैसे अभी जो क्लाइंट ने जो बोरोवर हैं जो हमसे पैसा लिए थे जो अभी एनपीए हो गए हैं सर तो वही वन टाइम सेटलमेंट करना चाह रहे थे कि मैं आपको कुछ अगर आप कम कर दो तो मैं वन टाइम सेटलमेंट कर लूँगा आपके साथ, मेरा भी लोन चुकता हो जाएगा और आप भी मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास ही रह जाएगी। तो ये तो आपने बता दिया कोई दूसरी बायर होगी तो सर वो काफ़ी कम हो जाएगा, 3.5 करोड़ चले जाएगा। बट सर मान लो वही बायर है तो हमें सर कितना रखना चाहिए उनके उनके पास?
ये सर बोलना थोड़ा टफ है क्योंकि देखिए उसमें कितना आपका लोन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है।
नहीं आप ऐसे मतलब मार्केट अप्रोच आप रहते तो मतलब छोड़ दीजिए कितना लोन दिए, फिर कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से?
इस पे सर मैं कंफर्ट नहीं क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे आज तक नहीं हुआ है इसलिए मैं इस पे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसका आइडिया नहीं है मेरे को क्योंकि देरी होने।
अच्छा,
मतलब सेम जो लेके अगर वही सेटलमेंट करे आज तक ऐसा सिचुएशन का काम नहीं पड़ा मेरा तो इस पे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा।
हम इन बिटवीन कुछ मतलब पकड़ सकते हैं ऐसा, जैसे आप बोल रहे हो कोई नया बार आएगा तो वो 3-4 करोड़ से ज्यादा तो देगा नहीं, और
3-4 करोड़ में तो देखिए सर कुछ आएगा ही नहीं, मैक्सिमम 2.5 करोड़ बोला ना उसके ऊपर सारे फायदे हैं। 2.5 करोड़ है प्लस रजिस्ट्री है प्लस टेनेंट खाली कराना होगा, फिर मकान का डिमोलिशन है, फिर नया पेंशन प्लान, नया बिल्डिंग बनेगा तो जगह चारों तरफ छोड़ना पड़ेगा, नया हिसाब से बनेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो ये सब करते करते ही 6-7 करोड़ रुपए चला जाए। और जो 6-7 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा उसको अगर वहां पर 2-3 करोड़ रुपए कमाई नहीं मिले तो फिर वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा?
अच्छा अच्छा, तो जैसे मान लीजिए उसका 6-7 करोड़ अगर जा रहा है, मतलब मैं एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो अगर हम वन टाइम सेटलमेंट करते हैं तो वो भी 7 करोड़ के आसपास होना चाहिए।
वन टाइम सेटलमेंट हाँ 7 करोड़ बोल सकते हैं।
अच्छा ठीक है सर, मतलब मैं आपको सर वो डिटेल्स भेज दूँ क्या, वो आप देखोगे कुछ दुर्गापुर में प्रॉपर्टीज थी
सर? उस एरिया का तो काफी अच्छे से है इन्वेस्टर्स
जो सर ये वाला काम तो सर अभी नहीं होगा सर क्योंकि अभी हमने रिजर्व प्राइस फिक्स नहीं किया है, टाइम है। बट जो ऑक्शन में अभी फिलहाल है सर वो दुर्गापुर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं सर, वहाँ काम करते हो सर आप?
हाँ करते हैं, आप कलकत्ता एरिया का हावड़ा एरिया का मेरे को दे सकते हैं, इस रीजन में मैं काम करता हूँ।
सर मैं दुर्गापुर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ काम है सर अभी, कोई एजेंट है आपके
दुर्गापुर का? देखिए मेरा अपना सोर्स नहीं है।
अच्छा,
अगर दुर्गापुर में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह है तो ट्राई कर सकते हैं।
इंडस्ट्रीज
तो
है सर,
नॉर्मल
इंडस्ट्री लैंड
है। इंडस्ट्री तो दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं।
मैं आपको सर जो अभी जो निकली है सर लास्ट ऑक्शन की जो शीट निकली है वो मैं आपको भेज देता हूँ, और देखिए सर अगर कुछ हो पाए तो, आप ही लोग हो सर तो हमारी। मेरा विनोद यादव।
और आप कैनरा बैंक का कौन सा ब्रांच से बोल रहे हैं?
मैं सर यहाँ आपने ये सुना है दुर्गापुर में ये क्या बोलते हैं सिटी सेंटर ब्रांच, उसी के उससे थोड़ा और आगे जाओगे तो भिरिंगी बोल के एक जगह है।
अच्छा,
वहीं पे से मैं बोल रहा हूँ, बट हमारी प्रॉपर्टी जो है सर वो कोलकाता की थी।
ओके,
वो हमारे पास ही है सर, बट वो होपफुली रिजर्व प्राइस मतलब अभी घुसेगा सर ऑक्शन में, और बाकी जो प्रॉपर्टीज है सर वो तो दुर्गापुर के आसपास ही है जो ऑक्शन में है पहले से, वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। और ये सर कोलकाता वाली होगी तो सर आपसे मतलब मेजर हेल्प लगेगा हमें।
बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर कीजिए, मेरे से जितना हो पाएगा मैं इतने से हेल्प करूँगा।
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर।